जयधवला पुस्तक सोलवी लेक्चर नंबर 5 आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सोलहवीं पुस्तक जो चारित्र मोक्ष अपना का अपना अर्थाधिकार आगे चल रहा है। हम पृष्ठ संख्या 59 पर आ गए। 59 यहाँ ये बात यहाँ चल रही थी 57 पृष्ठ पर, उसके भी पहले 55 पेज पर जो सूत्र है उसकी अभी ये बात चल रही है। यहाँ 10 भाष्य गाथाएं आने वाली है। मूल गाथा की 10 भाष्य गाथाएं है, उसमें पहली भाष्य गाथा 55 पेज पर उसका अर्थ देखते हम और फिर आगे बढ़ेंगे। विवक्षित पृष्ठी का बंध और संक्रम, नियम से क्या सभी स्थिति विशेषों में होता है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो वहां कहते कि सभी स्थिति विशेषों में नहीं होता, परंतु स्थिति संक्रम उदयावली को छोड़कर सभी स्थिति विशेषों में होता है, और स्थिति बंध भी सभी में नहीं होता। होता है क्या ये प्रश्न पूछा था, होता है ऐसा नहीं कह रहे, होता है क्या ऐसा पूछ रहे है। तथा विवक्षित पृष्ठी के अनुभाग का सभी अनुभाग संबंधी भेदों में संक्रम होता है, मात्र जिस पृष्ठी का वेदन करता है उसका मध्यम पृष्ठियों के रूप से उदय होता है। जिस पृष्ठी अभी उदय रूप हो रही है, हाँ, वो मध्यम रूप से वहां उदय चलेगा। ये तो हमने देखा था और उसके ऊपर चर्चा भी हुई थी 57 पेज पर। 58 पर आना, वहां का सूत्र पढ़ेंगे ऊपर का। वहां कहते हैं बंध और संक्रम नियम से स्थिति विशेषों में होता है, इस वचन से यह जाना जाता है कि इस द्वारा यह निर्देश किया गया है कि यह व्याख्यान सूत्र है या पृच्छा सूत्र है। तो कहते हैं पृच्छा सूत्र है, ये स्टेटमेंट नहीं है, प्रश्न है। तो वहां उसके उत्तर में बताते हैं नीचे का सूत्र कि उक्त प्रश्न के उत्तर में कहना चाहिए कि सब स्थितियों में बंध और संक्रम नहीं होता। बंध जो हो रहा है वो जितना स्थिति सत्व है उससे कम ही होता है, वो तो नियम है। और संक्रम भी उदयावली में जो प्रवेश कर चुके उसका तो संक्रम नहीं होगा, अन्य का होगा। अब नीचे आते हैं, नीचे का सूत्र। यहाँ कृष्टि वेदक का प्रकरण है, इसलिए इसके 4 मास इतनी ही स्थितियां बनती है तथा आवली प्रविष्ट, आवली ने उदयावली में जो नीचे आ गए हैं, उदय के समय से लेकर आवली काल तक जो निषेक है उनको छोड़कर सब स्थितियां संक्रामित की जाती है, अन्य स्थितियों में से परमाणु संक्रमित होते हैं। अब उसका अर्थ यहाँ भावार्थ बता रहे हैं 59 पेज पर, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इस विभाषा सूत्र का यह भावार्थ है, प्रथम समय में कृष्टि वेदक जीव के चारों संज्वलनों का स्थिति सत्कर्म 8 वर्ष प्रमाण होता है। अभी 4 मास बताया वो क्या था, बंद, और ये 8 वर्ष सत्कर्म, सत्ता में पड़ी हुई स्थिति 8 वर्ष प्रमाण है, क्योंकि क्रोध संज्वलन के उदय के समय क्षपक में यह सत्व स्पष्ट रूप ही पाया जाता है। किंतु उस काल में एतत् प्रमाण स्थितिबंध नहीं पाया जाता, मात्र उस काल में संज्वलन कषायों का स्थितिबंध 4 मास प्रमाण ही पाया जाता। यानी यहाँ भी पोजीशन क्या है, स्थिति सत्कर्म कितना है 8 वर्ष, स्थिति बंद है 4 मास का, और स्थिति संक्रम अभी क्या पड़ा था, उदयावली को छोड़कर बाकी सबका, यानी 8 वर्ष में से उदयावली छोड़ रहा है, यहां लिखा ना, किंतु उस काल में होने वाला स्थिति संक्रम उदयावली प्रविष्ट स्थितियों को छोड़कर शेष समस्त स्थिति विशेषों में प्रवृत्त होता है, क्योंकि उस काल में संक्रम संबंधी और दूसरा प्रकार संभव नहीं है। यहाँ एक वाक्य हमने डाला था कल, इस कारण से न सौवेषु स्थिति विशेषेषु ऐसा कहा गया है, ये उसका कारण बताया, यानी सभी स्थिति विशेषों में संक्रमण नहीं होता, क्यों, क्योंकि उदयावली को छोड़कर होता है, सभी में नहीं होता। क्या पूर्व कल नहीं थे आप, अच्छा, इस कारण से ये पीछे लिखा है ना, अब ये मैं बताती हूँ, यानी संभव नहीं है, फुल स्टॉप है, उसके पश्चात ही ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6 छठी लाइन में, उस काल में के पहले, वहां नहीं लास्ट में दूसरा प्रकार संभव नहीं है, मिला 6 लाइन, उस काल में क्या, उसके पहले, इस कारण से अतः प्राकृत पुरुष न सौवेषु ठिदि विशेषेषु, आपको देखना है ना, पीछे देखना, टू पहले शुद्धि पत्रक है ना, लास्ट में 247 पेज पर, 248 पर, लास्ट एकदम लास्ट पेज निकाल, वहां 59 पेज का करेक्शन बताया है, इस कारण से लास्ट देखा, वो बड़ी लाइन दिख रही है राइट साइड में ऊपर ना, वो तो अशुद्धि है, आप शुद्धि पढ़ना, शुद्धि की बात पढ़ना, ये संभव नहीं है, इस कारण से न सौवेषु ठिदि विशेषेषु ऐसा कहा गया है, में क्या लिखना, उस काल में नहीं चाहिए, कहा गया है स्थिति उदीर्णा भी उस काल में प्रथम समय में ही चल रही है ना, नहीं वो बीच में डाला है, अभी ऊपर तीसरी लाइन में लिखा है किंतु उस काल में स्थिति बंद उतना नहीं है, तो इसमें उस काल में स्थिति उदीर्णा भी, ये उस काल में से कुछ यानी निषेध नहीं, उस काल यानी अब स्थिति उदीर्णा की करेक्शन में उनको लिखना चाहिए था उसके आगे, उस काल में यानी उन्होंने ऐसा कहा गया वहां फुल स्टॉप दिया, उस काल में आगे होना चाहिए, उस काल में यहाँ है, नहीं अरविंद भाई का कहना था उस काल में निकाल देना, उस काल में रखना, उस काल में स्थिति उदीर्णा भी, अभी स्थिति उदीर्णा किसको कहते हैं, जिन जिन निषेकों में से परमाणु नीचे होकर उदयावली में प्रवेश करते हैं। तो कहां कहां से करते हैं? तो उदयावली छोड़कर ऊपर सबसे, तो उसको कहेंगे स्थिति उदीर्णा। तो स्थिति उदीर्णा भी उदयावली को छोड़कर शेष समस्त स्थितियों में प्रवृत्त होती है। इस प्रकार यह अर्थ भी इसी सूत्र द्वारा सूचित हुआ जानना चाहिए। यानी एक ही सूत्र में उन्होंने स्थिति से तो 8 वर्ष प्रमाण है, स्थिति बंध 4 मास है, स्थिति संक्रम उदयावली को छोड़कर 8 वर्ष प्रमाण है, और स्थिति उदीर्णा भी उदयावली को छोड़कर 8 वर्ष प्रमाण जो है उतनी है ऊपर से। इस प्रकार इतने प्रबंध द्वारा गाथा के पूर्वार्ध की विभाषा करके, उद्धव का रफार बराबर करना, अब गाथा के उत्तरार्ध का आश्रय करके अनुभाग, ये स्थिति की बात बताई उन्होंने, स्थिति संक्रम और बंध की बात, अब अनुभाग संक्रम और अनुभाग उदीर्णा की प्रवृत्ति विशेष का अवधारण करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। ये जो भाषा, यानी गाथा जो उन्होंने भाष्य गाथा बताई ना, उसी के लिए ये सूत्र की बात चल रही है। अभी हम आगे का सूत्र पढ़ेंगे। सर्वेषु च अनुभागेषु संक्रमो मध्यमो उदयो इति एदम सर्वम व्याकरण सूक्तम केते, तथा संक्रम सभी अनुभागों में होता है और उदय मध्यम कृष्टियों का होता है। इस प्रकार गाथा का उत्तरार्ध रूप यह सब व्याकरण सूत्र है। देखो क्या कहना चाहते हैं, गाथा निकालना तो आपको ख्याल में आ जाएगी। पेज 55 पर क्योंकि एक्सप्लेनेशन में तो उन्होंने बराबर बताया, गाथा में क्या लिखा है, बंधो व संक्रमो वा नियमा सर्वेषु स्थिति विशेषेषु, यानी बंध और संक्रम नियम से सभी स्थिति विशेषों में होता है। तो होता है नहीं, होता है क्या, ये प्रश्न है। पहली लाइन तो प्रश्न है और दूसरी लाइन सर्वेषु च अनुभागेषु संक्रमो मध्यमो उदयो, और ये तो स्टेटमेंट है। यानी ऊपर है वो पृच्छा सूत्र है और दूसरा है वो व्याकरण सूत्र है, ये बता रहे हैं। ख्याल में है ना क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने उसका अर्थ जब बताया था हिंदी में तो प्रश्नात्मक करके लिखा था, इसलिए यहाँ बार बार स्वयं आचार्य कहते हैं व्याख्यान को यहाँ व्याकरण सूत्र, व्याख्यान सूत्र का, यानी ये ऊपर का है वो प्रश्न है और नीचे का है वो स्टेटमेंट है, जिसको कहेंगे वो तथ्य है, उसका नियम बता रहे हैं। यानी इसको पृच्छा सूत्र कहा और नीचे का है वो व्याख्यान सूत्र कहो, व्याकरण सूत्र उसी को कहा।
सृष्टि के अनुवाद का सभी अनुवाद संबंधित वेदों में संक्रम होता है, तो विवक्षित सृष्टि के वो विवक्षित सृष्टि कौन सी नहीं है?
देखो यहाँ क्या कहते हैं, तथा संक्रम सभी अनुभागों में होता है, यानी जो सभी अनुभाग वाले अलग अलग पृष्ठियां पड़ी है, हर एक का अपना अपना आकर्षण चल रहा है,
तो
हर एक का अनुभाग कम हो रहा है।
उदयावली में प्रविष्ट हुए विषयों में भी कृष्टियों में ये होगा संक्रम,
उसका कहाँ प्रश्न है? सभी कृष्टियां सर्वत्र है, आप हमेशा वो स्थिति के और अनुभाग के बीच कंफ्यूजन होता है आपका। सभी कृष्टियां कहाँ पड़ी है? सर्वत्र पड़ी है, जहाँ कहीं पड़ी है नीचे होता है कि नहीं अपना विषय नहीं, सभी कृष्टियों में होता है कि नहीं। अभी जब अनुभाग की बात है तो मात्र अनुभाग की सोचो, और जब स्थिति की बात है तो मात्र स्थिति की सोचो। तो स्थिति में संक्रमण होता है वो तो हमने देखा, यानी स्थितियों में से परमाणु अपकर्षित वगैरह होते हैं वो हमने देखा। अब यहाँ क्या देखे, अनुभाग की बात है, तो अनुभाग हर निषेक में मैक्सिमम से लेकर मिनिमम तक अनुभाग पड़ा है और सबका अनुभव अपना अपना अनुभाग घट रहा है, तो उसमें भी वो चल रहा है। तो संक्रम सभी अनुभागों में होता है और उदय मध्यम पृष्ठियों का होता है, तो हमें देखा था मध्यम पृष्ठ रूप से उदय होता है। इस प्रकार गाथा का उत्तरार्ध रूप यह सब व्याकरण सूत्र है। ये व्याकरण सूत्र है ना, यहीं पर यहाँ पेज 58 पर उसको व्याख्यान सूत्र भी कहा था। व्याकरण सूत्र को या व्याख्यान सूत्र को एक ही बात है। इन्हें वे व्याकरण संबंधी नियम नहीं बता रहे, ये व्याख्यान बता रहे, स्टेटमेंट है बस। यह पूरा ही उक्त गाथा का व्याकरण सूत्र ही है, अर्थात प्रतिवचन सूत्र ही है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। शेष सब कथन सुबोध है। यानी पहला गाथा में पहली लाइन जो है जिसको पूर्वार्ध कहते हैं वो प्रश्नात्मक है, प्रश्न है, और दूसरी जो लाइन है उत्तरार्ध जो है वो तो व्याख्यान है, स्टेटमेंट है, वो तो कथन है बस। सव्वाओ किट्टियो संक्रमंती, उक्त शपक के सभी कृष्टियां संक्रमित होती है। उक्त शपक जीव के वेद्यमान और अवेद्यमान सभी कृष्टियों के समय के अविरोध पूर्वक संक्रम का नियम देखा जाता है। ये वेद्यमान अवेद्यमान सब आ गए। आपका प्रश्न ऐसा ही था ना? अब आगे बढ़ते हैं। जम किट्टिम वेद यदि तिस्से मज्जिम किट्टियो उदिन्नाओ, इसमें क्या नियम है? मात्र ने ऊपर तो बता दिया सभी में होता है, अब जो उदय रूप होती है मात्र वह क्षपक जिस संग्रह कृष्टि का वेदन करता है उसकी मध्यम कृष्टियां ही उदीर्ण होती, उदीर्ण होती ना उदय में आती। उक्त क्षपक के विद्यमान संग्रह कृष्टि के विद्यमान जिस रूप उसका उदय चल रहा है उसके अधस्तन और उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर। अभी विद्यमान संग्रह कृष्टि ने हम ऐसा लिखे कि प्रथम संग्रह कृष्टि का उदय चल रहा है, तो प्रथम संग्रह कृष्टि में अनंत अवयव कृष्टियां, तो नीचे का असंख्यात भाग छोड़ दो, ऊपर का असंख्यात भाग छोड़ दो, बीच वाले अनुभाग वाले जो अलग अलग कृष्टियां हैं उस रूप से उदय चलेगा। ये नीचे ऊपर स्थिति की अपेक्षा मत समझना। वर्तमान निषेक में हम लेफ्ट साइड में उत्कृष्ट दिखेंगे, राइट साइड में जघन्य दिखेंगे, तो उत्कृष्ट को हम उपरिम कहेंगे, जघन्य को अधस्तन कहेंगे। देखो उक्त क्षपक के विद्यमान संग्रह पृष्टि के अधस्तन और उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण पृष्ठियों को छोड़कर शेष समस्त मध्यम पृष्ठि रूप से उनके उदय और उदीर्णा प्रवृत्त होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। विशेषार्थ, पहले 165 संख्या के गाथा सूत्र का स्पष्टीकरण। यहाँ उदय और उदीर्णा अलग अलग बताया है। उदीर्णा ने अपकर्षण होकर उदय होना, जो वर्तमान निषेक में अधिक अनुभाग है वो घटकर उदय में आएंगे, उसी को उदीर्णा, और ऊपर के जो परमाणु नीचे आते हैं उदय रूप होकर भी आएंगे, स्थिति की उदीर्णा भी होगी तो मध्यम अनुभाग रूप से उसका उदय होगा, इस तरह से उसका भी अर्थ समझ सकते हैं। विशेषार्थ, पहले 165 संख्या के गाथा सूत्र का स्पष्टीकरण करने के प्रसंग से उसकी 10 भाष्य गाथाएं आई है, उनमें बंधो व संकोमुआ यह प्रथम भाष्य गाथा है। उसमें स्थिति विशेषों को ध्यान में रखकर बंध और संक्रम का तथा अनुभाग की अपेक्षा संक्रम का और किन कृष्टियों की उदय उदीर्णा होती है इसका विचार किया गया है। इसका विशेष खुलासा करते हुए वीरसेन स्वामी ने जो स्पष्टीकरण किया है उसका भाव यह है। एक नंबर, ये तीन पॉइंट्स बता रहे उसमें से पहला, शपक श्रेणी में क्रोध संज्वलन की प्रथम कृष्टि के वेदन के समय संज्वलन कषाय का बंध चार महाप्रमाण ही होता है। यहाँ तो बंध तो चारों कषाय का हो रहा है, कितना होता है तो चार मास, इसलिए इससे ज्ञात होता है उक्त गाथा सूत्र का पूर्वार्ध पृच्छा सूत्र ही है, क्योंकि स्थिति तो 8 वर्ष की है और बंध तो 4 मास प्रमाण ही हो रहा है, यानी सभी स्थितियों का जैसा बंधन नहीं हो रहा। इसी प्रकार इसके संज्वलन की सत्ता 8 वर्ष प्रमाण होती है, इसलिए इसका संक्रम उदयावली को छोड़कर शेष सब स्थितियों का होता है यह निश्चित होता है। उदयावली सब करणों के अयोग्य होती है।
इसका अर्थ क्या है? उदयावली हाँ, जो उदयावली में प्रवेश कर चुके हैं, ना उसकी अपनी उदीर्णा होती है, क्योंकि वो क्रम से उदय में आएंगे, ना आकर्षण होता है, ना उत्कर्षण होता है, ना संक्रमण होता है, तो सब करणों के लिए अयोग्य है।
इसलिए उदयावली प्रमाण निषेकों का संक्रम नहीं होता, यह टीका में स्वीकार किया गया है। यह तो स्थिति बंध और स्थिति संक्रम का विचार है। अब दूसरा पॉइंट, अनुभाग के विषय में सूत्रकार का क्या कहना है, उसे स्पष्ट करते हुए बताया है कि संज्वलन की विवक्षित संग्रह पुष्टि के पूरे अनुभाग का संक्रम होने में कोई बाधा नहीं आती। जब संक्रम की बात है तो सभी जो अलग अलग पुष्टियां जो अनंत है, सब में अपने अपने में संक्रमण होगा। जितना भी विवक्षित संग्रह पुष्टि का अनुभाग है उसका समय के अविरोध पूर्वक यानी यथा आगम समय ने जिन आगम उसके अविरोध पूर्वक अपने काल तक संक्रम होता रहता है यह स्पष्ट है। यानी यथा योग्य काल तक उसका भी संक्रमण होता है। अकेले उत्कृष्ट नहीं, हर एक का अपना अपना जो है उसका घात हो रहा है। उत्कृष्ट तो घात हो ही रहा है, प्रत्येक समय में ऊपर की पृष्ठियों का घात तो हो ही रहा, हमने देखे थे ना। यहाँ तो कोई कांडक नहीं है, ऊपर का कितना ही जो अनुभाग वाले अन्य पृष्ठियां होगी वो तो उसका तो घात होकर वो नीचे जैसे हो जाएगी। वो तो हमने देखा था ना, ऊपर के घात होकर क्या क्या होता है, तीन बातें देखी थी। एक तो बंध से नई कृष्टि, अभी अनुभाग की बात नहीं, स्थिति के बंध की नहीं बात चल, अनुभाग की। यहाँ जो बंध हो रहा है वो विशिष्ट प्रमाण में हो रहा है, तो बंध से कृष्टि बन जाए, वो संग्रह कृष्टि के नीचे नहीं बनती, बीच में अंतराल में बनती, एक संक्रमण से बनती है। ऊपर के अधिक अनुभाग वाले कृष्टियां नीचे आकर वो संग्रह कृष्टि के अपने नीचे भी और इन बिटवीन अंतराल में भी उस जैसे उसकी कृष्टि बन जाती, तो कृष्टि से बनी। तीसरा और क्या होता है, ऊपर का घात होता है, घात होता है अग्रभाग से घात होता है, तो घात से भी वहां पर नीचे के जो पूर्व पृष्ठियों के समान वहां वैसा बन जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं दूसरा पॉइंट में, समय के अविरोध पूर्वक अपने काल तक संक्रम होता रहता है। अब तीसरा पॉइंट, मात्र उदय उदीर्णा के विषय में यह नियम है कि ये कौन से उदय उदीर्णा, अनुभव के संबंध में, जिस संग्रह पुष्टि की उदय उदीर्णा होती है उसके मध्यम अंतर पुष्टियों के रूप से ही उदय उदीर्णा होती है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। जो उदय रूप अभी नीचे आ गए उसकी भी, और जो उदीर्णा होकर अभी उदय में आएंगे वो भी मध्यम अनुभाग रूप से उदय में आएंगे। इस प्रकार इतने सूत्र प्रबंध द्वारा प्रथम भाष्य गाथा का आश्रय कर मूल सूत्र गाथा में निर्दिष्ट स्थिति और अनुभाग संबंधी संक्रम और उदीर्णा की प्रवृत्ति विशेष का निर्णय करके अब दूसरी भाष्य गाथा की विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को कहते हैं। यानी एक भाष्य गाथा है, दस भाष्य गाथा है, पहले ये मूल गाथा पर दस है, उसमें से एक हो गई है। यानी स्थिति बंध संक्रम और अनुभाग बंध संक्रम कितने का होता है ये पूछा गया था। अब कहते हैं तो विद्याय भाषगाहाय समुत्कीर्तना, इससे आगे अब दूसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है जहां जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब ये 167 नंबर की यहाँ गाथा बताएंगे। शंका में दिउदीरे दी चा विसौवे हिठ दिविशेषे किट्टिये अनुभागे वेदेन्तो मज्जिमो नियमो। यक्षपक सर्वस्थिति विशेषों के द्वारा क्या संक्रम और उदीर्णा करता है, यह फिर प्रश्न है। पृष्टि के अनुभागों का वेदन करता हुआ नियम से मध्यम पृष्ठियों के अनुभागों का वेदन करता है, यहाँ पर भी पहला प्रश्न और दूसरे उसका कथन है। यह दूसरी भाष्य गाथा प्रथम भाष्य गाथा द्वारा निर्दिष्ट किए गए अर्थ विशेष की ही फिर भी विशेष रूप से प्ररूपणा करके करने के लिए अवतीर्ण हुई है, क्योंकि उसमें कहे गए स्थिति संक्रम, स्थिति उदीर्णा और अनुभाग के उदय का किंचित विशेष करके इस भाष्य गाथा में निर्देश देखा जाता है। पहला ही विषय बताएंगे और थोड़ा ज्यादा स्पष्ट करें, और ऐसा होने पर इस भाष्य गाथा में पुनरुक्त पने का दोष आता है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्व की भाष्य गाथा में नहीं कहे गए पूर्व व बराबर स्थिति अनुभाग और उदीर्णा का और क्यों डालना, तथा परुविद स्थिति अनुभाग उदीर्णानम स्थिति अनुभाग उदीर्णा का, यानी स्थिति उदीर्णा और अनुभाग उदीर्णा का, मेरे ख्याल से और शब्द नहीं चाहिए। यह परीक्षण कहाँ है बच्चे, नियमो नियम हाँ 9 नंबर पर हाँ नियमो लिखे ना, वहाँ नियमा चाहिए, मध्यमो नियमा। हाँ देख, ये अभी हम आगे बढ़ेंगे कि पूर्व की भाष्य गाथा में नहीं कहे गए स्थिति अनुभाग उदीर्णा का इस भाष्य गाथा में प्रधान रूप से कथन पाया जाता है। मैंने यहाँ उदीर्णा की बात, वहाँ बंदर संक्रम की बात की थी, यहाँ उदीर्णा की करते हैं, ये और यानी उसी में विशेषता हो गई ना, उदीर्णा भी अपकर्षण है, उसको भी संक्रमण कह सकते हैं, परंतु ये स्पेसिफिक है ज्यादा। अब इस भाष्य गाथा के अवयवों के किंचित अर्थ की प्ररूपणा करेंगे, वह जैसे शंका मेदी उदीरेदी चावी, ऐसा कहने पर क्या सभी स्थिति विशेषों के द्वारा संक्रम करता है या उदीर्णा करता है, अथवा सभी स्थिति विशेषों द्वारा संक्रम और उदीर्णा नहीं करता, इस प्रकार इस भाष्य गाथा के पूर्वार्ध में पृच्छा का संबंध है, क्योंकि इस गाथा के पूर्वार्ध का पृच्छा सूत्र रूप से अवस्थान देखा जाता है। यहाँ भी पहले लाइन में प्रश्नात्मक है, इस कारण क्या सभी स्थिति विशेषों को संक्रमित करता है और उदीरित करता है अथवा नहीं करता, इस प्रकार कहना चाहिए। वहां तो केवल बंदो व संक्रम व इतना ही पूछा, यहाँ संक्रम और उदीर्णा इस तरह से पूछ रहे हैं। इस प्रकार पृच्छा का निर्देश गाथा के पूर्वार्ध में प्रतिबद्ध है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। गाथा के उत्तरार्ध में पृष्ठि के अनुभागों को वेदन करता हुआ नियम से मध्यम पृष्ठि रूप से ही वेदन करता है, इस प्रकार सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है, और इस प्रकार इस भाष्य गाथा का उत्तरार्ध निर्देश सूत्र ही है, पृच्छा सूत्र नहीं। वहाँ व्याख्यान सूत्र कहा था, व्याख्यान सूत्र यहाँ निर्देश सूत्र कहे, कथन है यह। इस प्रकार पहले के समान व्याख्यान करना चाहिए। अब इस प्रकार इस भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं, यानी यहाँ तो गाथा बताई, पहले वाले गाथा में भी सेकंड लाइन में क्या देखा था हमने, सवेशु च अनुभागेशु संकमो मध्यमो उदव, यहाँ किट्टी अनुभागे वेदंतो मध्यमो नियमो। अब आगे पढ़ते हैं, 62 पेज पर पढ़ रहे हैं हम सूत्र विभाषा। अब इस भाष्य गाथा की विभाषा की जाती है, एक ही अलग निकालना,
ऐसा भी गाहा पुच्छा सुत्तम, यह भाष्य गाथा भी पुच्छा सूत्र है, यह सूत्र सुगम है। अभी उसी का फिर अर्थ बताएंगे। किम सव्वे ठिदि विशेषे शंका मेरी उदीरे दिवा आहो न वक्तव्यम्। क्या सभी स्थिति विशेषों को संक्रमित और उदीरित करता है अथवा नहीं, इसे कहना चाहिए। आहो न वक्तव्यम्। यह सूत्र सुगम है तो कहते आवलिय पवित्ठम मोत्तुन शेषाओ सव्वाओ ठिदियो शंका मेदी उदीरेदी च। उदयावली में प्रविष्ट हुई स्थिति को छोड़कर शेष सब स्थितियों को संक्रमित करता है और उदीरित करता है। ये तो पहले भी बताए थे, अभी स्पेसिफिकली और बता रहे। यह सूत्र सुगम है। जम किट्टिम वेदेदी तिस्से मज्जिम किट्टियो उदीरेदी तथा वह क्षपक जिस संग्रह पृष्ठि का वेदन करता है उसकी मध्यम पृष्ठियों को उदीरित करता है। यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार दूसरी भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा समाप्त हुई। एक तो तदीयाय भाषगाहाय समुक्कीर्तन, यहां से आगे तीसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। जहां जैसे यह सूत्र सुगम है। अब गाथा बताते हैं 168 नंबर। ओ कड्ड दिजय हमसे से काले किन्नु ते पवे से दी ओ कट्टि दे जपूम सरी सम सरी से पवे से दी। यह क्षपक जिन कर्म प्रदेशों का अपकर्षण करता है वह क्या उन कर्म प्रदेशों को तदनंतर समय में उदीर्णा द्वारा प्रवेशक होता है? जिन कर्म प्रदेशों का पहले समय में अपकर्षण किया है उनका सदृश अथवा असदृश रूप से उदीर्णा द्वारा प्रवेशक होता है। एक कुछ और एक स्टेटमेंट लगता है यहाँ पर, अभी इसका अर्थ बताएंगे। यह तीसरी भाषिका था अपने पूर्वार्ध के द्वारा स्थितियों और अनुभागों की अपेक्षा कर्म प्रदेशों की अनंतर समय में ही क्या उदीर्णा संभव है या उदीर्णा संभव नहीं। क्या जब वो एक बार उदीर्णा हुई है, अपकर्षण हुआ है, तो दूसरे ही समय में फिर उसकी उदीर्णा होती है या नहीं होती, ये प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रकार के अर्थ विशेष का पृच्छा द्वारा निर्णय का कथन करने के लिए अवतीर्त हुई है तथा उत्तरार्ध द्वारा उस प्रकार से उदीरित होने वाले उन प्रदेशों का क्या एक वर्गना रूप से परिणमन करके सभी की सदृश रूप से उदीर्णा प्रवृत्त होती है या नाना वर्गना रूप से परिणमन करके विसदृश रूप से उदीर्णा परिणाम होता है। इस प्रकार इस अर्थ विशेष का स्पष्टीकरण करने के लिए यह गाथा अवतीर्ण हुई है, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। यह इस गाथा के पूर्वार्ध में आए हुए अवयवों के अर्थ की प्ररूपणा सुगम है। उत्तरार्ध में पृच्छा का इस प्रकार संबंध करना चाहिए कि ओकड्डिदेज पूर्वम अर्थात जिन प्रदेशों का अनंतर पूर्व समय में अपकर्षण किया था उन अपकर्षित कर्म प्रदेशों की पुनः तदनंतर समय में उदीर्णा करने वाला जीव उनको क्या सदृश रूप से प्रवेश कराता है या असदृश रूप से प्रवेश कराता है, ये यहाँ का प्रश्न है। अब उसके उत्तर और उसका समाधान करेंगे। यहाँ पर सदृश और असदृश पदों का निर्णय आगे चूर्णी सूत्र के संबंध से ही करेंगे। ये आगे इसका निर्णय होने वाला क्या कहना चाहते हैं। इसलिए पृष्ठियों की क्षपणा करने वाला जीव जिन कर्मों की स्थितियों और जिन कर्मों को स्थितियों और अनुभवों के द्वारा आकर्षित करता है, क्योंकि स्थिति में से भी परमाणु की स्थिति घटती है उसको आकर्षण कहेंगे। जिनका अनुभव घटता है उनको कहेंगे अनुभव का आकर्षण। क्या तदनंतर समय में पुनः उनका आकर्षण करके उनको उदय में प्रवेश करता है या प्रवेश नहीं करता? मैंने एक समय में ऊपर से नीचे आकर्षित हुए, अब दूसरे समय में वहां से फिर छूटकर नीचे उदय में प्रवेश कर सकता है या नहीं, ये प्रश्न। और प्रवेश कराता हुआ अनंतर पूर्व समय में क्या आकर्षित किए गए उन कर्म परमाणुओं को क्या अनुभाग के द्वारा सदृशी प्रवेश कराता है या क्या विसदृश उन कर्म परमाणुओं को प्रवेश कराता है? यह यहाँ सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। पहले में पहले अनुभाग अपने अपने नीचे आकर्षण हुआ, आकर्षण हुआ तो अलग अलग पुष्टियों में से आकर्षण हुआ है तो वेरिएशन है उसमें भी। नेक्स्ट समय में फिर उसकी उदीर्णा होती है तो क्या वो एक समान एक अनुभाग होकर नीचे आते हैं क्या अलग अलग में आते हैं, ये प्रश्न है। क्या होता है वो स्वयं बताएंगे। इस प्रकार इस गाथा द्वारा पूछे गए अर्थ के विषय में निर्णय करने के लिए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। 65 प्रश्न पर आए विभाषा। अब इस भाष्य गाथा की विभाषा की जाती है, यहाँ भी की अलग निकालना। यह सूत्र सुगम है। ऐसा भी गाहा ये पृच्छा चाहिए न, पच्छा हुआ है। पुच्छा लिखते हैं को। ऐसा विगाह पुच्छा सूत्र, यह भाष्य गाथा भी पुच्छा सूत्र है। यह सूत्र सुगम है। अब इस गाथा में क्या पूछा गया है ऐसी आशंका होने पर यह आगे का सूत्र कहते हैं, यानी गाथा में क्या पूछा है इसी को और समझाएं। ओकडी जे अंसे से काले किन्नु ते पवेसे दी आहुण वत्तव। जिन कर्म परमाणुओं को आकर्षित करता है अनंतर समय में उन्हें क्या प्रविष्ट करता है या नहीं प्रविष्ट करता है कहते हैं। जैसे पहले 63 पेज निकालना। जैसे यहाँ लिखा है ना आहोण के बाद प्रश्न चिन्ह और फिर बाद में वक्तव्य, वैसे में किम सव्वेठ इति विशेष पहली लाइन प्राकृत की किम सव्वेठ इति विशेष शंका में उदिरे दी वहां आहोण, वहां जाके प्रश्न चिन्ह चाहिए और फिर वक्तव्य अथवा नहीं आहोण अथवा नहीं, वो वहां वाला कॉमा निकाल के आहोण के आगे प्रश्न चिन्ह चाहिए। तभी मैं मुझे आहो न वक्तव्यों का अर्थ कुछ नहीं। हाँ आहो न के बाद अभी जो हमने सूत्र पढ़ा उसको देखना, देखो 65 पेज पर और आगे केवल वक्तव्य में इतना लिखा है। प्रश्न करता है या नहीं करता कहते हैं, समय में नहीं जो एक समय में आकर्षित हुआ है क्या इमीडिएट दूसरे समय में उसका संक्रमण हो सके यानी उदीर्णा हो सकती है कि नहीं हो सकती। जैसे हमने देखा संक्रमण होने पर आवली काल तक फिर उसमें कुछ नहीं होता, बंद होने पर आवली काल तक कुछ नहीं होता, तो ये कहते हैं एक बार आकर्षण हुआ तो दूसरे समय में उसमें से उदीर्णा होगी कि नहीं होगी, ये सवाल है। हम पढ़ेंगे भाष्य गाथा के पूर्वार्ध में पृच्छा का संबंध इस प्रकार करना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। 65 पेज पर हम पढ़े हा? अब इस प्रकार पूछे गए अर्थ के विषय में निर्णय का विधान करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। वहां तो प्रश्न है अभी उसका निर्णय तो होना चाहिए समाधान, तो वहाँ कहते हैं पवे से दी ओकट डिदे च पूर्व मनंतर पूर्व गेणा, पूर्व समय में अपकर्षित करने पर उससे अनंतर समय में प्रवेश कराना शक्य है। उदयावली में प्रवेश कराना, क्योंकि उदीर्ण होती है कि नहीं होती ये सवाल पूछा गया है ना। प्रविष्ट कहाँ की बात है? उदयावली में प्रविष्ट करने की। देखो हम देखते हैं, पहले बताया था उन्होंने 63 पेज पर नीचे का यह क्षपक 168 गाथा का अर्थ। यह क्षपक जिन कर्म प्रदेशों का आकर्षण करता है वह क्या उन कर्म प्रदेशों को तदनंतर समय में उदीर्णा द्वारा प्रवेशक होता है? ये प्रवेशक है ने उदयावली में प्रवेशक की बात है, वही यहाँ बात होती है। यहाँ तो केवल प्रवेश कराना इतना ही लिख दिया। तो कहते हैं एक समय पूर्व जो आकर्षित हुआ है दूसरे समय में वो उदीर्णा के द्वारा प्रवेशक हो सकता है, यानी उदयावली में आ सकता है। अब इसको पढ़ेंगे उसका स्पष्टीकरण। अनंतर पूर्व समय में अपकर्षित किए गए प्रदेशों का तदनंतर समय में ही प्रवेश कराना संभव है, इस विषय में प्रतिषेध नहीं है, यानी वो हो सकता है। इससे ज्ञात होता है कि उत्कर्षित किए गए प्रदेश पुंज का, उत्कर्षित के लिए एक नियम है, जो उसकी तो बंद की तो अपेक्षा है ही है। तो जो एक समय में उत्कर्षित हुआ है, उत्कर्षित होने पर दूसरे समय में उसका आकर्षण नहीं होता। जिसका आकर्षण हुआ है उसका कुछ हो सकता है, उत्कर्षण भी हो सकता है आकर्षण भी हो सकता है, पर जो उत्कर्षण हुआ है बंद के साथ जो उत्कर्षण हुआ है उसका अवली तक कुछ नहीं होता। इससे ज्ञात होता है कि उत्कर्षित किए गए प्रदेश पुंज का जिस प्रकार एक आवली काल तक निरुपक्रम निरुव हुआ है ना, निरुव चाहिए निरुपक्रम भाग है, पर हम निरुपक्रम कहते हैं उसको, निरुपक्रम रूप से रहने का नियम है, ये तो सर्वत्र नियम है उसका। उस प्रकार अपकर्षित किए गए प्रदेश पुंज का यह नियम नहीं है। अन्यत्र भी ऐसा ही नियम है, अपकर्षित किए जाने पर दूसरे समय में दोबारा अपकर्षण संभव है, पर उत्कर्षण होने पर आवली काल तक उसका संभव नहीं है। किंतु अपकर्षित करने के, ये पहले भी एक बार हमने पढ़ा था, अपकर्षित करने के दूसरे समय में ही पुनः अपकर्षित करके, एक समय में अपकर्षित हुआ ऊपर से नीचे आ गए कहीं और वहां से और नीचे आ सकता है दूसरे समय, तो अपकर्षित करने के दूसरे समय में ही पुनः अपकर्षित करके इसका प्रवेश कराना संभव है, ऐसा यहाँ ज्ञान कराया गया है। यहाँ अनंतर पूर्व गेण ऐसा कहने पर, अनंतर पूर्व समय में कर्म प्रदेशों के अपकर्षित करने पर यह अर्थ ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सप्तमी विभक्ति के अर्थ में तृतीय विभक्ति के निर्देश का इस पद में अवलंबन लिया गया है। यानी अनंतर पूर्व समय द्वारा लिखा, तो अनंतर पूर्व समय में हम कह सकते हैं, अनंतर पूर्व समय द्वारा जिसका आकर्षण किया था, या अनंतर पूर्व समय में जिसका आकर्षण किया था, अर्थ दोनों का एक ही है। तो तृतीय विभक्ति वापरी, परंतु वो में समझना उसका, सप्तमी के अर्थ में। अब सदृश और असदृश पदों के अर्थ का निर्णय करके, दूसरा शब्द आया था सदृश रूप से वो उसका उदीर्णा होती है उसकी, क्या सदृश विसदृश होती है, तो सदृश असदृश पदों के अर्थ का निर्णय करके गाथा के उत्तरार्ध की विभाषा करते हुए आगे के प्रबंध को आरंभ करते हैं। सरिसम सरिसे यानी सरिसम असरिसे ती नाम का संज्ञा। तो सदृश और असदृश इस नाम की संज्ञा का क्या अर्थ है, यानी सदृश किसे कहना और असदृश किसे कहना, ये अपनी भाषा किसे कहते हैं उसको। ये नाम लिखना जरूरत नहीं था, ती नाम का संज्ञा, ये गुजराती में जैसे ना नाम अर्थ के उसमें आते, नाम नहीं आता है? मैं बता दे नाम सो यानी इसका अर्थ ऐसा ऐसा होता है, उसके लिए नाम शब्द आता था बीच में, आप सुनना कभी भी। जैसे द्रव्य के अर्थ में तत्व शब्द आना है, या अर्थ शब्द हमको डालना है, तत्व डालना अर्थ अर्थ में घोटाला होगा, तो द्रव्य नाम तत्व ऐसा कहेंगे, यानी द्रव्य का ही अर्थ है तत्व। ऐसा ऊपर लिखा है सरिसम असरिसे ती नाम का सन्ना, इस अर्थ की क्या, यानी उसके इस नाम का क्या अर्थ होता है, ऐसा यहाँ कहना। तो यहाँ सदृश इस संज्ञा का क्या अर्थ है, ये नाम की संज्ञा का ही नहीं चाहिए। इस संज्ञा का क्या अर्थ है, बीच में नाम की शब्द वो भाषा की दृष्टि से बराबर नहीं। तो सदृश असदृश इस संज्ञा का क्या अर्थ है, सदृश पना या असदृश पना क्या देखकर प्रकृत में विवक्षित है, यह पूछा गया था। किसके संबंध में सदृशता कहते हो, हम भी कहें ना हमारे दोनों बालक समान है, क्या एज में समान है, कि वजन में समान है, क्या और कितना मार्क्स में समानता है, किसमें है। तो यहाँ कहते सदृशता किसमें है वो तो बताओ, कौन सी अपेक्षा लगाना है। अभी पृच्छा का निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। जदि जे अनुभागे उदिरेदि 21 से वगणाए सव्वे ते सरिसानाम, अध जे उदिरेदि अनेकासु वगणासु ते असरिसानाम। यदि एक वर्गणा के रूप में जिन अनुभागों की उदीरणा करता है, अब एक वर्गणा के रूप में हम वर्गणा किसको कहते हैं, समान अभिभाग वाले परमाणुओं का। जो आप कहेंगे यहाँ वर्गणा है ही नहीं, कृष्टि है, उसी को वर्गणा कहा है, समान अनुभाग वालों को वर्गणा नाम दिया। तो क्या एक समान ही परमाणु केवल उदीरित होते हैं कि अलग अलग अनुभाग वाले भी हो गए, ये प्रश्न पूछा है। तो यदि एक वर्गणा के रूप में, पहले सदृश किसे कहना असदृश किसे कहना ये बता रहे, फिर होती है कि नहीं होते हो तो आगे बताएंगे। तो यदि एक वर्गणा के रूप में जिन अनुभागों की उदीरणा करता है उन सब की सदृश संज्ञा है, यानी उतने सभी परमाणुओं को हम कहेंगे ये सदृश रूप से है, तथा अनेक वर्गणाओं के रूप में जिन अनुभागों की उदीरणा करता है उनकी असदृश संज्ञा है, अलग अलग अनुभाग वालों की उदीरणा होती है तो उसको भी असदृश कहेंगे। इस प्रकार एवं इस प्रकार फिर आगे कहने वाले का यह अभिप्राय है, उदय में प्राप्त होने वाली अनंत कृष्टियां, उदय में तो अनंत कृष्टियां अलग अलग, हाँ वो उत्कृष्ट और जगने वाली थोड़ी छोड़ी, पर उदय रूप जो मध्यम है वो भी अनंत है। तो कहते हैं उदय में प्राप्त होने वाली अनंत कृष्टियां, यदि सभी कृष्टियां एक कृष्टि रूप से परिणमन करके उदय को प्राप्त होती है तो उनकी सदृश संज्ञा होती है, और यदि अनंत कृष्टियों को आकर्षित करके उदय को प्राप्त हुए परमाणु यदि अनंत कृष्टि होकर स्थित रहते हैं तब वे असदृश संज्ञा वाले कहे जाते हैं, क्योंकि वे अनेक वर्गणा रूप से परिणत हुए हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा सदृश और असदृश पदों का ज्ञान कराकर, ये किसे कहना वो तो बताए, अब मूल विषय तो अब बताएंगे, अब इन दोनों विकल्पों में किस प्रकार से कृष्टियों की उदीरणा प्रवृत्त होती है, क्या सदृश रूप से या विसदृश रूप से, ऐसी आशंका होने पर उत्तर कहते हैं। उसका उत्तर देगी आगे के सूत्र में। यदि ये सन्नाए से काले जे पवेसे दी ते असरिसे पवेसे दी। इस संज्ञा के अनुसार अनंतर समय में जिन कृष्टियों को उदय में प्रविष्ट करता है उन्हें असदृश ही प्रविष्ट करता है। ही लगा अब ये मैं इसको सब पढ़ेंगे। उदय में प्रविष्ट कराने की बात है, ऊपर से नीचे आते तो किस रूप से आते उसकी बात चल रही है। उदय में तो अनंत अलग अलग अनुभाग है ही, उसका तो निषेध नहीं है। इस अनंतर कही गई संज्ञा के अनुसार यानी सदृश किसे कहना असदृश किसे कहना इसके अनुसार प्रकृत अर्थ का निर्णय करने पर तदनंतर समय में जिन अनुभागों को प्रविष्ट करता है उसको नियम से असदृश ही प्रविष्ट करता है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। उदय को प्राप्त अनंत कृष्टियों का अनुभाग एक अंतर कृष्टि स्वरूप नहीं होता, ये बताना चाहते हैं। उदय को प्राप्त होने वाले की इतने अनंत वेरिएशन है तो एक अंतर पुष्टि रूप नहीं होता। अंतर पुष्टि की बात है ना, पहले संग्रह पुष्टि का उदय चलता हो, परंतु जिन अवयव पुष्टियों का उदय है उसकी संख्या तो अनंत है, यानी अनंत अलग अलग वेरिएशन है अनुभाग, उसको अलग अलग पुष्टि कहा। तो किंतु अनंत पुष्टि स्वरूप होकर रहता है, ये उक्त कथन का तात्पर्य है। प्रकृत में से काले ऐसा कहने पर अपकर्षित करने के अनंतर दूसरे समय में ही यह कहा गया है। विशेषार्थ इस भाष्य गाथा में बताया गया है कि जिन कृष्टियों का अपकर्षण होता है उनका अनंतर समय में क्या उदय उदीर्णा रूप से परिणमन होता है या नहीं होता। यदि उस रूप से परिणमन होता है तो वह सदृश रूप से परिणमन होकर उदय उदीर्णा होती है या विसदृश रूप से परिणमन कर उदय उदीर्णा होती है। क्या सभी जो उदय रूप परमाणु एक ही विशिष्ट अनुभाग वाले हैं, तो कहते नहीं, इसमें अनंत वेरिएशन है तो विसदृश रूप से। उत्कर्षण के लिए तो यह नियम है कि जिन कर्म परमाणुओं का स्थिति और अनुभाग रूप से उत्कर्षण होता है वे एक आवली काल तक तदवस्थ रहते हैं। तदवस्थ यानी उसी रूप से, उसी अवस्था में, उसी स्थिति में और उसी अनुभाग में। किंतु जिनका अपकर्षण होता है उनका दूसरे समय में ही अन्य रूप होना संभव है, संभवनीय पॉसिबिलिटी है। होता है ऐसा नहीं है, हो सकता है वहां आए ऊपर से कोई परमाणु अपकर्षित होकर और वहां जो थे वो अन्य ही परमाणु अपकर्षित होकर चले गए दूसरे समय में, परंतु जो आए हैं उन्हीं में से फिर दोबारा नीचे जाए ये संभव है, ये पॉसिबल है। इस नियम के अनुसार यहां यह प्रश्न है कि जिन अनंत अवंत के अनंत अवयव दृष्टि हाँ। इस नियम के अनुसार यहाँ यह प्रश्न है कि जिन अनंत अवांतर पुष्टियों का आकर्षण होता है वे क्या अनंतर समय में एक कृष्टि रूप से परिणमन कर अवस्थित रहते हैं या क्या, यहाँ अनंत चाहिए ना, अनंत र नहीं चाहिए, या क्या अंतर कृष्टि रूप से परिणमन कर वे अवस्थित रहते हैं। अंतर अनंतर नहीं, अंतर कृष्टि अनंत कृष्टि अनंत कृष्टि रूप से। फिर से प्रश्न है कि जो अनंत अवांतर पुष्टियों का अपकर्षण है, बीच वाले अनंत जो है वेरिएशंस पुष्टियों का अपकर्षण किया, अब निक्ष समय में वो एक कृष्ण रूप से परिणमन कर अवस्थित रहते हैं या अनंत कृष्ण रूप से परिणमन कर अवस्थित रहते हैं, यह एक प्रश्न है। इसका समाधान करते हुए चूनी सूत्र में बताया है कि जिन अनंत अवांतर कृष्णियों का यह जीव आकर्षण करता है वे अगले समय में अनंत कृष्ण रूप से ही अवस्थित रहती है। इस प्रकार इतने विभाषा ग्रंथ के द्वारा तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा करके अब चौथी भाष्य गाथा की यथावसर प्राप्त विभाषा करते हुए इस सूत्र को कहते हैं। इसमें ये बात ख्याल में आ जाएगी कि पहले समय में अपकर्षण हुआ है, नेक्स्ट समय में इमीडिएट उसका अपकर्षण होकर उदीर्णा हो सकती है, और वहां तो किस रूप से थी उस समय? अनंत अलग अलग रूप से, कृष्ण रूप से। तो कहते हैं वो अनंत रूप से रहेगी, उसमें कोई सब मिलकर एक जैसे होने की कोई वहां कोई यानी जरूरी नहीं है, वो तो विसदृश ही रहेगी। एतो चौथी भाषगाहा है समुकीर्तना, इससे आगे चौथी भाष्यगाथा की समुकीर्तना करते हैं। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब गाथा बताएं 169। उक्कडिदे च पूवं सरिसम सरिसे पवे सेदी। यह क्षपक जीव जिन कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण करता है, क्या वह अनंतर समय में उन कर्म परमाणुओं को उदीर्णा द्वारा प्रविष्ट करता है? ये प्रश्न। पूर्व समय में उत्कर्षित करने पर उनकी उदीर्णा करता हुआ सदृश रूप से प्रविष्ट करता है या असदृश रूप से प्रविष्ट करता है? ये दोनों ही प्रश्न है। जिस प्रकार ने प्रकार जिस प्रकार अपकर्षण का परामर्श किया यानी उस संबंधी चर्चा की, उसी प्रकार प्रकृति में भी उत्कर्षण के संबंध में संबंध से परामर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। अब यह परामर्श कर दो अलग अलग चाहिए। अब यह गाथा भी पृच्छा सूत्र ही है।
इस उत्कर्षण का परामर्श किया उसी प्रकार में भी उत्कर्षण के संबंध में परामर्श कर लेना चाहिए।
हाँ, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। ऐसा कहाँ का? उसके संबंध में भी जान लेना चाहिए। अभी जाना कहाँ है? अभी तो पूछा है।
परामर्श यानी चर्चा ही करना है।
जिसको भी ना वहाँ पोह करना चाहिए, परामर्श करना चाहिए, संबंधी अधिक जानकारी लेनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। मैंने ये भी पृच्छा है, जैसे वहां पृच्छा की थी और बाद में उसका निर्णय किया था, यहाँ भी पृच्छा किए इसका भी निर्णय करना चाहिए। ये सूत्र द्वारा ही करेंगे, चूर्णी सूत्रकार स्वयं बताएंगे।
परामर्श का ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ही समझ लेना चाहिए,
ऐसा नहीं। उसका तो परामर्श है, उसकी भी चर्चा करनी चाहिए, उसका भी यहाँ निर्णय कर लेना चाहिए, उस संबंध में चाहिए। यानी जैसे अपकर्षण के बारे में हमने देखा, उत्कर्षण के बारे में भी क्या है यह समझना चाहिए। अपकर्षण वैसा ही यहाँ नियम है, ऐसा नहीं कहा। वहां तो नियम क्या है वो बता चुके, अब यहाँ क्या होता है यह समझ लेना चाहिए। अभी ये तो अभी प्रश्न में अटके, अभी उत्तर तक कहाँ गए हम। अब यह गाथा भी पृच्छा सूत्र ही है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए चूर्णी सूत्र को कहते हैं। एदम पृच्छा सूत्रम, यह पृच्छा सूत्र है। यानी यह स्टेटमेंट नहीं है, यही बात सिद्ध होती ना, ये तो प्रश्न है। यह सूत्र सुगम है। अब इस गाथा द्वारा पूछे गए अर्थ का पृष्टि वेदक के विषय में किसी प्रकार के भी प्रयोजन की संभावना नहीं है, इस बात का कथन करने के लिए आगे के प्रबंध को कहते हैं। कहते एदिसे गाहाय किट्टीकरण पहुड़ी नथी अथो। कहते इस गाथा के अर्थ का पुष्टिकरण प्रकरण से लेकर कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों नहीं बोलो? उत्कर्षण यहाँ होगा ही नहीं। क्यों? जितनी स्थिति है उससे अधिक स्थिति बनती नहीं है, और जितना अनुभाग है उससे अधिक अनुभाग बनता नहीं है। बंधेगा तो उत्कर्षण होने का सवाल है। फिर भी यहाँ अपकर्षण के बारे में नियम बताया है, तो यहाँ एक शपक के बारे में कुछ बात नहीं है, एक मात्र सामान्य से उत्कर्षण का नियम बताएंगे। इसलिए कहते एदिस से गाहाय किट्टीकरण पहुड़ी नथी अथो। इस गाथा के अर्थ का पुष्टिकरण प्रकरण से लेकर कोई प्रयोजन नहीं है। अन्यतर भी नहीं, यहाँ की क्या बात है? हाँ, शंका, इसका क्या कारण है, उसका समाधान। उत्कर्षणाकरण पुष्टिकरण के विषय में अत्यंत असंभव है। क्योंकि पुष्टिकरण का अर्थ ही होता है इतना अनुभाग अत्यंत अनंत गुणाहीन हो रहा है, उसमें उत्कर्षण, उसी परिणाम से उत्कर्षण भी हो रहा है, उसी परिणाम से इतने अपमान। इसलिए वह यहाँ प्रतिषिद्ध है। इस कारण उत्कर्षण के संभव होने पर उत्कर्षित किए गए प्रदेश कुंज का तदनंतर समय में ही क्या अपकर्षण करके उनका प्रवेश कराना क्या संभव है, या उनका प्रवेश कराना असंभव नहीं है? क्यों लिखा संभव नहीं है? संभव है या संभव नहीं है? परंतु इस तरह ऐसा विचार ख्याल में आता है, परंतु यहाँ पर उत्कर्षण का ही अत्यंत अभाव होने से प्रकृति विचार का अवसर ही नहीं है। यह यहाँ इस सूत्र के अर्थ के साथ संभव सद्भाव है। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आगे के सूत्र का निर्देश करते हैं। स्पष्ट करने के लिए हंदी किट्टी कारगो किट्टी वेदगो वहाँ ठिदी अनुभागे न उपकटदिति। खेद है हंदी ने खेद है कि यह जानना चाहिए कि हंदी यह जानो और निश्चय करो कि नीचे लिखा ना हंदी का अर्थ यह जानना चाहिए कि किया है यह जानना चाहिए कि लिखा उन्होंने हंदी कीर्तिकारको कीर्तिवेदको वा ठिदी अनुभागे न उपपद्यते इति। यह जानना चाहिए कि पुष्टि कारक और पुष्टि वेदक स्थिति और अनुभाग का उत्कर्षण नहीं करता। नीचे हंदी इन्वर्टेड में यह जानो और निश्चय करो कि पुष्टि कारक और पुष्टि वेदक स्थिति और अनुभाग का उत्कर्षण करके उन्हें ऊपर नहीं संक्रमित करता है। उसको भी संक्रमण कहते हैं उत्कर्षण को, परंतु यहाँ नहीं करता। हाँ, वो तो है अनुभव, वो कम ही होगा यहाँ। तो कहते यह नियम क्यों है? क्योंकि यहाँ संबंधी क्षपक परिणामों के उत्कर्षण के अत्यंत विरुद्ध स्वभाव रूप से अवस्थान का नियम देखा जाता है। परंतु जो पुष्टि कर्मांशिक से भिन्न जीव, पुष्टि कर्मांशिक से भिन्न जीव है, यानी जिन्होंने कृष्टि रूप से परिणमन नहीं किया है, उसके इस प्रकार के अर्थ का विचार प्रवृत्त होता है, क्योंकि उस जीव के उत्कर्षण होने का निषेध नहीं है। और उसका पहले ही अच्छी तरह से विचार कराए हैं। इस प्रकार इस अर्थ का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, जो किट्टी कम्मनु सिगो वदिरित्तो जीव तस्य एसो अथो पूर्वम परिविदो। फुल स्टॉप देना है। ऊपर जो किट्टी कम्मनुसी है वो एक शब्द करना है, जो किट्टी कम्मनुसी का वदिरित्तो नहीं, वो तो उसके साथ हो सकता है। जो कृष्टि कर्मोशिक से अतिरिक्त जीव है उसके इस अर्थ का पहले ही कथन करा है। यह सूत्र गतार्थ है क्योंकि अपवर्तना संबंधी अंतिम मूल गाथा के संबंध से इस अर्थ का पहले ही अच्छी तरह विचार कर आए हैं। शंका, यदि ऐसा है तो यह गाथा आरंभ नहीं की जाना चाहिए क्योंकि इस विषय में यह गाथा असंभव दोष से दूषित हो जाती है। क्या कहते, यहाँ होता ही नहीं पृष्ठि में उत्कर्षण, तो यहाँ इसका अगर कथन करेंगे तो असंभव दोष आता है इसमें, तो होता ही नहीं तो क्यों कह रहे हैं, और यहाँ नहीं अन्यत्र होता है तो पहले कह चुके, यहाँ क्यों कह रहे थे। समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि उत्कर्षण प्रकृति में असंभव है, उसको स्पष्ट करने के लिए ही इस गाथा के अवतार की सफलता देखी जाती है। यानी जो यहाँ हो ही नहीं सकता वही बताने के लिए यह गाथा ही है। इसलिए अपकर्षण के संबंध से उत्कर्षण के भी संभव होने और संभव न होने रूप निर्णय का विधान करने के लिए यह गाथा अवतीर्ण हुई है, इसलिए प्रकृति में कुछ भी निषेध योग्य नहीं है। विशेषत पहले मूल गाथा 111 में यह स्पष्ट कर आए हैं कि अनिवृत्तिकरण में जब यह जीव अनुभाग की अपेक्षा चारों संज्वलनों की कुष्ठियों की रचना करता है और जब इनका वेदन करता है तब उन दोनों अवस्थाओं में इसके अपकर्षण ही होता है, उत्कर्षण नहीं होता। ऐसी अवस्था में प्रकृति में उत्कट दीजिए हमसे यह गाथा नहीं कही जानी थी क्योंकि कुष्ठियों के वेदन काल के समय इस गाथा में प्रतिपादित विषय का प्रकृति में कोई प्रयोजन नहीं देखा जाता है। यह एक शंका है। इसका समाधान करते हुए बताया है कि प्रकृति में इस गाथा में प्रतिपादित विषय की संभावना है या नहीं, इस बात को स्पष्ट करने के लिए यह इस गाथा का अवतार हुआ है। यानी यहाँ उत्कर्षण होता है नहीं होता इसका ही हम निर्णय यहाँ ले सकते हैं, इसलिए गाथा यहाँ ठीक है। और निष्कर्ष रूप में यह बतलाया गया है कि इस गाथा में प्रतिपादित विषय का प्रकृति में कोई प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन नहीं, नहीं गाथा बेकार के ऐसा नहीं, उत्कर्षण होता नहीं ऐसा। इस प्रकार इस चौथी भाषा गाथा के अर्थ की विभाषा का उपसंहार करके अब यथावसर प्राप्त पांचवी भाषा गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए उसका अवसर करने के लिए प्रारंभ करने के लिए इस सूत्र को प्रारंभ करते हैं। एतो पंचमी भाषगाथा, इससे आगे पांचवी भाष्य गाथा आई है, यह सूत्र सुगम है। अब गाथा 170 नंबर की। बंधो वसंकमो उदयो वातः पदेषु अनुभागे पौगं तेथोऽहं जे जहेव पूवं तहेवेन्निम्। पुष्टि वेदक के प्रदेश और अनुभाग विषयक बंध, संक्रम और उदय
इनका बहुत्व या स्तोकत्व, बहुत्व या उसका अल्पपना, जिस प्रकार पहले अर्थात संक्रामक प्रस्थापक के कहा है। संक्रामण प्रस्थापक कब से कहा था? अंतरकरण के बाद। पहले आठ कषायों की क्षपणा की थी तभी उसको नहीं कहा था उसमें। यहाँ पर उसका नाम है संस्थापक, संक्रामक प्रस्थापक। उसी प्रकार इस समय कहना चाहिए, यानी जब संक्रामक प्रस्थापक था वो कृष्टि कारक था, है ना, तभी से कृष्टिकरण चालू हुआ था। अब पृष्ठी वेदक है, यह पांचवी भाष्य गाथा। पृष्ठी वेदक शपक के प्रदेश और अनुभाग विषयक, बंध उदय और संक्रमण संबंधी प्रवृत्ति विशेष की प्रति समय स्वस्थान अल्प बहुत्व विधि से प्ररूपणा करने के लिए आई है। अब शंकाकार पूछते हैं कि कैसे, उसका समाधान आगे इसका विवरण प्रस्तुत करते हैं, यानी इसको समझाएंगे अपने। बंधो व संक्रमो व ऐसा कहने पर प्रदेश और अनुभाग विषय बंध संक्रमण उदय प्रति समय किस प्रकार प्रवृत्त होते हैं? क्या प्रदेशों के विषय में असंख्यात गुण वृद्धि रूप से प्रवृत्त होते हैं या असंख्यात गुणहानि रूप से प्रवृत्त होते हैं या अन्यथा प्रवृत्त होते हैं? अनुभाग के विषय में भी क्या अनंत गुणहानि रूप से प्रवृत्त होते हैं या अनंत गुण वृद्धि रूप से प्रवृत्त होते हैं या अन्यथा प्रवृत्त होते हैं? इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में सूत्र का अर्थ के साथ संबंध है। अब इसी प्रकार पूछे गए अर्थ के विषय में निश्चय को उत्पन्न करने के लिए गाथा का उत्तरार्ध उत्तीर्ण हुआ है। बहुवंते थोवंते इत्यादि बहुत्व का या स्तोकत्व का निर्धारण करने पर जिस प्रकार पहले प्रदेश और अनुभाग विषय बंध उदय और संक्रम का कथन कराए हैं, उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इसी का भावार्थ और बता रहे हैं। पुष्टिकरण से पहले की अवस्था में, यानी पूर्व अवस्था, पुष्टिकरण होने के पहले की बात है, जिस प्रकार संक्रामण प्रस्थापक के चौथी मूल गाथा का आश्रय कर तीन भाषा गाथाओं के द्वारा प्रदेश और अनुभाग विषय बंध उदय और संक्रम का स्वस्थान विशेषता से युक्त अर्थात स्वस्थान संबंधी अल्प बहुत्व का अनुमार्गण किया, यानी हमने उसको देखा, शोध किया, उसी प्रकार इस समय भी अनुमार्गण कर लेना चाहिए, यहाँ भी समझ लेना चाहिए। यहाँ पर उक्त स्थान से कोई विशेष संभव नहीं है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इसी सूत्र के स्पष्टीकरण के लिए विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। क्या होगा प्रदेश में, ज्यादा होगा कि कम होगा? हाँ, प्रदेश में ज्यादा, क्यों? योग कम अधिक हीनाधिक होता है, उदय में अधिक प्रदेशों का उदय होगा और हाँ, अभी हम यहाँ देखेंगे। पहले ये विभाषा करते ना, तो कहते हैं विहासा। अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। यह सूत्र सुगम है, तम जहा वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। आगे का सूत्र, संकमगे चत्तारी मूल गाहाओ तथ जा चौथी मूल गाहा तिस्से तिन्नी भाष गाहाओ तासिम जो अथो सो इनिसे भी पंचमीय गाहाए अथो कायो वो। संक्रामक प्रस्थापक के विषय में चार मूल गाथाएं हैं। संकमगे न संकामगे, ऊपर सूत्र में संकमगे लिखा है, संकामगे चाहिए।
तो इसका अर्थ संक्रामक प्रस्थापक के विषय में चार मूल गाथाएं हैं। उनमें जो चौथी मूल गाथा है उसकी तीन भाषा गाथाएं हैं। उनका जो अर्थ है वही इस पांचवी गाथा का भी अर्थ करना चाहिए। अब इस सूत्र का अर्थ कहते हैं, बंदो व संकमो व उदो व किम सगे सगे ठाणे, ये 94 नंबर की, यह संक्रमण प्रस्थापक की चौथी मूल गाथा है, उन्होंने पहले देखी थी। इसकी तीन भाषा गाथाएं हैं, वे कौन है ऐसा कहने पर बंदो दये ही नियमा, यानी 95-148 यह प्रथम भाष्य गाथा है। गुणश्रेणी असंख्य जा च पदे सज्ञे न, यह दूसरी भाष्य गाथा है। तदा गुण दो अनंत गुणहीनम वेदयदे, यह तीसरी भाष्य गाथा है। इस प्रकार इन तीनों भाष्य गाथाओं का संक्रामक करना सक्र हुआ है, सक्रमक संक्रामक संक्रामक प्रस्थापक के विषय में जो अर्थ पहले प्ररूपित कर आए हैं वही पूरा इस पांचवी भाषा गाथा का अर्थ करना चाहिए। तथा जिस प्रकार अनुभाग और प्रदेश पुंज का आश्रय करके बंद उदय और संक्रम का अल्पभूतव कहा है, उसी प्रकार यहाँ पर भी भेद के बिना कहना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तत्पश्चात पांचवी भाष्य गाथा की अर्थ संबंधी विभाषा समाप्त हुई। अब इसी का विशेषार्थ समझाएंगे। संक्रामक प्रस्थापक के बंद, संक्रम और उदय अपने अपने स्थान में अनंतर अनंतर काल की अपेक्षा क्या अधिक है, हीन है या समान है, यह मूल गाथा यानी 94 नंबर की जानने की पूछा की गई है। आगे इन तीन भाषा गाथाओं द्वारा उक्त पूछा का समाधान किया गया है। इसका समाधान करते हुए प्रथम भाषा गाथा 95 नंबर की, उसमें बताया है कि संक्रामक प्रस्थापक के प्रथम समय में जो अनुभाग बंद होता है तदनंतर समय में वह अनंत गुणाहीन होता है, यह अनुभाग के बारे में होता है। यानी यहाँ जो अनुभाग का बंद है वो प्रति समय अनंत गुणाहीन बंदे, अनुभाग के बंदे के बारे में। उदय के विषय में भी इसी प्रकार जानना चाहिए, उदय भी क्या होगा, अनंत गुणाहीन उदय में भी आएगा। संक्रम के विषय में यह व्यवस्था है कि जितने काल में एक अनुभाग कांडक का उत्कीर्ण करता है तब तक वह उतने उतने ही अनुभाग का संक्रम करता है, क्योंकि वो जब तक लास्ट फाली नहीं खेलेगी तब तक वहां तक के सभी अनुभागों का संक्रमक होगा। उसके बाद अन्य अनुभाग कांडक का प्रारंभ करने पर उसके काल तक उसे भी प्रति समय समान रूप से अनंत गुणहीन अनुभाग का संक्रम करता है, ये अनुभाग की बात बता रहा
है।
ये अनुसमय अपवर्तन कब जाके हुआ है, पुष्टि वेदक में हुआ। अब ये बात संस्थापक संक्रामक प्रस्थापक की चल रही है। आगे दूसरी भाष्य गाथा में बतलाया है, ये 96 नंबर की, कि प्रथम समय में जितना प्रदेश उदय होता है, प्रदेश उदय की बात है, दूसरे समय में असंख्यात गुणे प्रदेशों का उदय होता है। तो हमने देखा है गुण श्रेणी की रचना हुई थी, असंख्यात गुणा और भी नीचे नीचे प्रति समय आता है अपकर्षण, इसी प्रकार आगे आगे के समयों में जानना चाहिए। प्रदेश उदय के समान संक्रमक की भी प्ररूपणा जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी जो संक्रमण हो रहा है वो प्रति समय अनंत असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा वहां पर भी चलेगा, संक्रमण होता है ना अन्य रूप से होता है। प्रदेश बंध के विषय में यह नियम है कि प्रदेश बंध काहे से होता है मंजू बहन? योग से। तो योग विशुद्धि से योग बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थान बताए कि प्रदेश बंध के विषय में यह नियम है कि वह चार वृद्धि, चार हानि और अवस्थान रूप से भजनीय है। भजनीय नहीं, उसमें वेरिएशन हो सकता है। तीसरी भाष्य गाथा 97 में जो बात कही गई है वह प्रथम भाष्य गाथा में ही प्ररूपित की जा चुकी है, इसलिए उस संबंध में कोई विशेष व्याख्यान नहीं है। संक्रामक प्रस्थापक की अपेक्षा यह जितना भी कथन है वह सब पृष्ठियों की क्षपणा में प्रवृत्त हुए जीव के भी जानना चाहिए। यह इस पांचवी भाष्य गाथा का समुच्चय रूप अर्थ है। यहाँ अनुभाग कांडक नहीं होता, परंतु यहाँ कथन क्या है कि जो अनुभाग बंद होता है वो अनंत गुणाहीन होता है, जो उदय होता है वो भी अनंत गुणाहीन ही होता है। ये स्टेटमेंट तो इसमें भी लागू होगा। ये पांच हो गई अभी गाथाएं। अब यथावसर प्राप्त छठी भाष्य गाथा के अर्थ की विभाषा करने के लिए यह सूत्र कहते हैं। एक तो छठी भाष्य गाथा, इससे आगे छठी भाष्य गाथा है, यह सूत्र सुगम है। अब गाथा 171 नंबर की, जो कम सोपविशदी पोग साते नियम सा अहियो पविशदिठि दिखेण दु गुणेन गणना दियंतेन। जो कर्म पुंज प्रयोगवश उदीर्णा द्वारा उदय में प्रविष्ट होता है, उससे स्थिति क्षय द्वारा उदय में प्रविष्ट होने वाला प्रदेश पुंज सॉरी कर्म पुंज नियम से असंख्यात गुणा होता है। क्या कहना चाहते हैं? जो अपने अपने क्रम से नीचे आते आते नीचे गलना चल रहा है ना, अभी जो प्रदेश पुंज ऐसा स्थिति गलकर जिसका उदय हुआ है, और दूसरे कौन से? जो ऊपर से उदीर्ण होकर उदय में आए। तो उदीर्ण होकर आए हुए ज्यादा है कि वहां जो स्थित थे वो ज्यादा? तो यहाँ कहते वहां जो स्थित थे वो नियम से असंख्यात गुणा। यह छठी भाष्य गाथा इस कृष्टि वेदक शपक के प्रदेशों की उदीर्णा से प्रदेशों का उदय असंख्यात गुणा होता है। क्या कहा? ये प्रदेश उदीर्णा से प्रदेश उदय असंख्यात गुणा होता है, इस नियम के प्रतिपादन के लिए अवतीर्ण हुई है। वह जैसे जो कमंसो पविशदि, जो कर्म प्रदेश पुंज नियम से उदय में प्रवेश करता है, कैसे प्रवेश करता है ऐसा कहने पर पोगसा प्रयोगवश अर्थात परिणाम विशेष के कारण उदीरित होता है। प्रयोग के कारण है, परिणाम के कारण। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तेन नियमसा अधिगो, उसकी अपेक्षा निश्चय से ही अधिकतर होता है। शंका, वो कौन प्रवेश करता है जो अधिकतर होता है? समाधान, ठिदिक क्षय न दो, जो स्थिति क्षय से अर्थात कर्म के उदय से प्रविष्ट होने वाला प्रदेश पिंड है वह अधिक होता है। स्थिति क्षय हुआ ना उसका, जो क्रम से नीचे आ रहे हैं। शंका, परंतु वह किस गुणकार से गुणा करने पर अधिक होता है? ऐसा पूछने पर कहते हैं समाधान में, गुणेन गणनादि अंतेन अर्थात असंख्यात से गुणा करने पर अधिक होता है। गणनादि अंत जिसको हम इन्यूमरेबल कहते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते, अगणित जिसको, एक होता है अनंत और एक होता है असंख्यात। जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, उसको संख्यात कहेंगे, और उसको आगे असंख्यात और फिर आगे अनंत है। तो यहाँ कहते हैं असंख्यात गुणा करने पर अधिक होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये चार लाइन पर लेते हैं। इसका भावार्थ, अंतरकरण प्रारंभ करने के पूर्व ही असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा का आरंभ करके प्रवेश कराने वाला, ये पहले हमने देखा था किस स्थान पर असंख्यात समय प्रबद्धों की उदीर्णा होती है। जिस प्रदेश पुंज को उदीर्णा रूप से प्रत्येक समय में उदय में प्रवेश करता है उसे देखते हुए जो कर्म पुंज स्थिति क्षय से गुणश्रेणी स्वरूप से रचा गया द्रव्य उदय में प्रविष्ट होता है, यानी वो असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा नीचे अपकर्षण होता था उसकी गुणश्रेणी बनती थी और वो अभी काल इतना गया है तो वो जब उदय में आएगी तो वहां ऑलरेडी बहुत बड़ा माल है, ज्यादा है। तो नियम से असंख्यात गुणा ही जानना चाहिए क्योंकि गुणश्रेणी के महात्म्यवश उसके उस प्रकार से सिद्ध होने में कोई प्रतिबंध नहीं उपलब्ध होता, यानी हर समय में उसमें असंख्यात गुणा द्रव्य आता रहा है तो अभी जो स्थिति उदय रूप में आ गई है वो तो बहुत बड़ी है, उस समय में जो उदीरत हुआ है द्रव्य वो उसकी अपेक्षा से कम है। अब इसी अर्थ विशेष को स्पष्ट करते हुए आगे के विभाषा ग्रंथ को आरंभ करते हैं। रुकेंगे हम जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकारो सोवाणी मस्तक नमो सदा देव।